पृष्ठ संख्या 191 निष्कर्ष। हिंदी और फारसी सूफी कवियों को हम ठीक एकेश्वरवादी नहीं कह सकते और उनके चिंतन पद्धति का संबंध इजादिया मत से स्थापित नहीं कर सकते। निस्संदेह उनकी विचारधारा शुदूदिया तथा वजूदिया मतों से पूर्ण रूपेण प्रभावित है। पृष्ठ संख्या 192। सूफियों का परम तत्व सगुण अथवा निर्गुण। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की सम्मति है कि सूफियों का परम तत्व सगुण निराकार है। एक, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत 2 के मतानुसार सूफी लोग मानसिक सगुणवाद में विश्वास करते हैं। तात्विक दृष्टि से वे निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं और साधना की सुगमता के लिए उनका गुरु निर्गुण को सगुण रूप देकर उस रूप से शिष्य को परिचित करा देता है। शिष्य उसी रूप में अपनी समस्त भावनाएं, सारी उपासना केंद्रित कर देता है। इस तरह से उनका ब्रह्म निर्गुण होते हुए भी साधक के मन क्षेत्र में सगुण हो जाता है। 3, हमारे विचार में फारसी एवं हिंदी सूफी कवियों द्वारा लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति का आदर्श प्रस्तुत करने से तथा प्रतीकों के प्रयोग से परम तत्व के निर्गुण रूप का सगुणीकरण हुआ। अतएव कवियों ने निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों का चित्रण किया। निस्संदेह यह सगुण मूर्ति पूजक तथा अवतारवादी सगुण भक्तों के भगवान के रूप से समानता नहीं रखता। 1, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, लखनऊ, सन 1949 ईस्वी, पृष्ठ 198। 2, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, हिंदी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, कानपुर, सन 1961 ईस्वी, पृष्ठ 409। 3, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत इसी मत को अधिक स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार व्यंजित करते हैं। सूफी लोग परमात्मा के निर्गुण स्वरूप में आस्था रखते हुए भी सगुण की प्रतिष्ठा किए बिना नहीं रह सके। इसका कारण संभवतः उनकी साधना की व्यक्तिकता है। कहते हैं कि जब कोई साधक किसी पीर के पास दीक्षा लेने आता था तो वह कहता था कि तुमने किसी को संतत दिलो जान से प्यार किया है या नहीं। यदि नहीं तो वह दीक्षा देने से इनकार कर देता था। यदि हाँ तो वह दीक्षा देता था और कहता था कि परमात्मा ठीक तुम्हारे प्रियतम के रूप का है, तुम उसके सगुण आकार रूप का ध्यान करो, उसी से प्रेम करो, वही प्रियतम है, वही तुम्हारा आराध्य है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, जायसी का पद्मावत, दिल्ली, सन 1963 ईस्वी, पृष्ठ 120, पृष्ठ संख्या 193। सुल्तान अबू सईद अबुल खैर सगुण रूप का चित्रण इस प्रकार करते हैं। ए बा रुखत अनवारे मह ओ खुर हमाहेच, बा लाले तू सल्स बीलो कौसर हमाहेच, बूदम हमा बी चुतेज बी शुद चश्मम, दीदम की हमा तुई ओ दीगर हमाहेच। 1, हे ईश्वर, तेरे मुखमंडल की तुलना में सूर्य तथा चंद्र की आभा तुच्छ है। तेरे पद्मराग जैसे होठों के सम्मुख स्वर्ग की नहरें सल्स बील एवं कौसर तुच्छ हैं। मैं पहले सबको देखता था, परंतु जब तेरी दृष्टि पैनी हो गई तो मैंने देख लिया कि तू ही तू है और सब सांसारिक वस्तुएं तुच्छ हैं, हीन हैं। कुछ अन्य रुबाइयां देखिए। ए चश्मे तू चश्मे चश्मा ए चश्मे हमा, बे चश्मे तू नूर नीस्त दर चश्मे हमा, चश्मे हमारा नजर बसुए तू बवद, अज चश्मे तू चश्महाश्त दर चश्मे हमा। 2, अर्थात हे ईश्वर, तेरी आँख प्रत्येक आँख के सोते के लिए उद्गम स्थल है। यदि तेरी आँख न हो तो किसी में ज्योति न हो। सब प्राणियों की आँखें तेरी ओर देखती हैं, तेरी ही आँख के कारण सबकी आँखों में सोते हैं। 1, रुबाइयाते अबू सईद अबुल खैर लाहौर, शेख जान मोहम्मद अल्लाह बख्श, रुबाई 11, पृष्ठ 51। 2, रुबाइयाते अबू सईद अबुल खैर लाहौर, शेख जान मोहम्मद अल्लाह बख्श, रुबाई 385, पृष्ठ 113, पृष्ठ संख्या 194। तथा ए खालिके जुल जलालो हके रहमा, सहजिंदा ए कारहाए बे सामाना, खसमाने मरा मुती ए मना भी गर्दा, बेरहमा रा रही में मन भी गर्दा। 1, अर्थात हे प्रतापवान सृष्टा, दयालु, निर्धनों एवं असहायों के काम बनाने वाले भगवान, तू मेरे शत्रुओं को मेरे वशीभूत कर दे और क्रूरों को मुझ पर दया करने वाला बना दे। और ए शमा ए दिल कामते संजीदा ए तू, वसले तू हयाते ई सितम दीदा ए तू, चुआईना पुरुषोद्दिलम अक्से रुखत, सुयत निगरमो लेख अजदीदाए तू दो, अर्थात हे प्रभो तेरा सुडौल कद मेरे दिल के लिए दीपक है, तेरा मिलन मुझ दुखित एवं पीड़ित के लिए जीवन है, दर्पण की भांति मेरा दिल तेरे मुख के प्रतिबिंब से परिपूर्ण है, मैं तेरी ओर देखता हूँ परंतु तेरी ही दृष्टि से। ख्वाजा फरीदुद्दीन ने परम तत्व के सगुण रूप का उल्लेख इस प्रकार किया है, हमा अज जुमला बेशो हम पेश अज हमा, जुमला अज खुद दीदा ओखेश अज हमा। तीन, हे ईश्वर तू सर्वश्रेष्ठ है और पुरातन एवं सनातन है, तू सबको देखता है और तेरा रूप सब में दृष्टिगोचर होता है। एक, वही रुबाई 343 पृष्ठ 103। दो, वही रुबाई 381 पृष्ठ 112। तीन, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार मंती कुत्तैर लाहौर शेख मुबारक अली पृष्ठ 6 पृष्ठ संख्या 195। तथा आ जमा कूरा अया जोई निहास्त, वा जमा कूरा निहा बिना अयास्त, गर अया जोई निहा आगाह बवद, वर निहा जोई अया आगाह बवद। एक, अर्थात किसी समय वह भगवान व्यक्त होता है परंतु मानव उसे भीतर खोजता है, और कभी वह छिपा हुआ होता है और मानव उसे प्रत्यक्ष देखता है। अगर तू उसे प्रत्यक्षता ढूंढेगा तो वह छिप जाएगा, और यदि तू उसे दिल में खोजेगा तो वह प्रकट हो जाएगा। शेख सादिक गुणों के भंडार भगवान के उपर्युक्त सगुण रूप को इस प्रकार अपने शब्दों में व्यंजित करते हैं, गैबदा ओ लतीफो बेचूनी सतर पोषो करीमो तववावी। दो, अर्थात हे भगवान तू अंतर्यामी स्वच्छ सूक्ष्म और अद्वितीय है, पर्दा डालने वाला दयालु कृपालु एवं तौबा स्वीकार करने वाला है, लुत्फे उ लुत्फे अस्त बेरू अज हिसाब, फजले उ फजले अस्त अफजू अज शुमार। तीन, अर्थात कारुणिक ईश्वर की कृपाएं ऐसी हैं जो अगणित हैं, और दयालु ईश्वर की दयाएं ऐसी हैं जो असंख्य हैं। अब हम ख्वाजा हाफिज के दीवान से भगवान के सगुण रूप के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, हर दो आलम यक फरोगे रुए उस्त गुफ्तमत पैदा हो पिन्हा नीज हम। चार, एक, वही पृष्ठ 7। दो, मवाइजे सादी तेहराज 1320 पृष्ठ 71। तीन, मवाइजे सादी तेहराज 1320 पृष्ठ 34। चार, दीवाने हाफिज लाहौर काशीराम प्रेस पृष्ठ 459 पृष्ठ संख्या 196। अर्थात दोनों लोक उसके मुख की एक झलक हैं। मैंने यह बात प्रत्यक्ष रूप से भी कह दी है और प्रतीकों के माध्यम से परोक्ष रूप से भी। ख्वाजा हाफिज ने प्रायः परम तत्व का सगुण रूप अपनाकर प्रतीकों द्वारा सूफी मत की व्याख्या की है। उसने अलौकिक परम प्रियतम के मुख तिल जुल्फ आदि का बार बार उल्लेख किया है। ए रूए तू दर लताफत आईना ए रूह, खाहम की कदमहाय खयालत ब सबूह, दर दीदा कशम वले जे खारे मिजा अम, तरसम की शवद पाए खयालात मजरूहा। एक, अर्थात हे ईश्वर तेरा मुख मृदुलता कोमलता एवं स्वच्छता में आत्मा के समान है, मैं चाहता हूँ कि प्रातः काल तेरी कल्पना के कदमों को आँखों में खींचूं, परंतु अपनी पलकों के कांटों से डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि वे घायल हो जाएं। तथा ख्याले रुए तू दर हक तरीक हम रहे मास्त, नसीमे मुए तू पैवंदे जान आगहे मास्त। दो, अर्थात तेरे मुख का ख्याल हर राह में हमारा साथी है, तेरे बालों की नर्म वायु आत्मा से बंधी हुई है जो कि रहस्यों से परिचित है। तथा दीदने रुए तुरा दीदा ए जहाँ भी बायत, वी कुजा मर्तबा ए चश्मे जहाँ बीने मनस्त। तीन, अर्थात हे ईश्वर तेरे मुख के देखने को आत्मा की आँख चाहिए, यह मान मेरी सांसारिक वस्तुओं को देखने वाली आँख को कहाँ प्राप्त है। अब हम इसी सगुण रूप से संबद्ध हिंदी सूफी कवियों के भाव एवं विचार प्रस्तुत करते हैं। एक, वही तृतीय रुबाई पृष्ठ 728। दो, दीवाने हाफिज लाहौर काशीराम प्रेस पृष्ठ 92। तीन, वही पृष्ठ 61 पृष्ठ संख्या 197। जैसी प्रभु से कहते हैं कि मैंने जाना कि तुम मेरे भीतर व्याप्त हो, परंतु जब मैं ध्यान पूर्वक देखता हूँ तो ज्ञात होता है कि तुम सर्वत्र विद्यमान हो, मैं जानेऊ तुम मोहि माहा देखो ताकि तोह सब पाहा। एक, उस्मान भी कहते हैं कि वह ईश्वर सब में रम रहा है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ वह व्याप्त नहीं, सोई करता रमी रहा रोम रोम सब माही, तिन सब कीन सृष्टि यह गाहक कीन्हो नाही। दो, नूर मोहम्मद लिखते हैं कि ईश्वर गुप्त भी है और प्रकट भी, आप ही आदि और आप ही अंत है, आप ही सुनता है और आप ही देखता है। उसने बुद्धिमान मनुष्यों का निर्माण किया। आप गुप्त और प्रगट, आप आदि और अंत, आप सुने और देख है, कीन मनुष्य बुद्धवंत। 3. नूर मोहम्मद ने पुनः लिखा है कि वह परम तत्व देता है, करता है, देखता है, सुनता है और बोलता है। आपो ही दाता करता होई, दिष्टा सष्टा बक्ता सोई। 4. सूफी कवि इस भाव की अभिव्यंजना बार बार करते हैं कि वह परम तत्व हृदय में वास करता है, हृदय भीतर पियू बसे। 5. 1. जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 37। 2. उस्मान चित्रावली पृष्ठ 2। 3. कवि नूर मोहम्मद इंद्रावती पहला भाग पृष्ठ 1। 4. वही पृष्ठ 54। 5. जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 276। फारसी कवियों की भांति हिंदी के सूफी कवियों ने भी प्रभु की दयालुता एवं कृपालुता का प्रचुर चित्रण किया है। उनका दृढ़ विश्वास है कि उस प्रभु की कृपा अनहोनी को होनी में, निराशा को आशा में, अप्राप्ति को पृष्ठ संख्या 198 प्राप्ति में परिवर्तित कर सकती है। उसकी कृपा अपार है। वह कृपावश समस्त संसार का पालन करता है। उसकी कृपा से सूखी भूमि शस्य श्यामला हो जाती है। नूर मोहम्मद लिखते हैं, घनसो मही पर भेजत नीरा, पलुहत सूखी भूमि शरीरा। 1. आगे लिखते हैं कि यह भव सागर अपार है, मेरी करने की नाव अच्छी नहीं, मुझे तो केवल तुम्हारी दया का आश्रय है, तुम्हारी दया ही से मेरी मुक्ति संभव है। है अपार सागर भव केरा, मोहि करनी को नाव नखेरा, है हम कह आलंब तुम्हारी, तो ही दया सो मुकुत हमारी। 2. उस्मान ने भी इस प्रकार के विचारों को व्यक्त किया है। वे कहते हैं, हे ईश्वर, दया करने से पूर्व अपने विरत का स्मरण करो, मेरी करनी पर ध्यान न दो, अपने दयालु नाम को सार्थक करने के लिए ही मुझ पर दया दृष्टि करो। हेरु गोसाई आप कह मोरे का जन हेरु, आपन नाव दयाल गुनी, हो दयाल एहि बेरु। 3. कवि जैसी भी भगवान के दयालु, कृपालु, दानी, समदर्शी, कर्तव्य परायण, सगुण रूप का विशद वर्णन करते हुए लिखते हैं, वस्तुतः वही इस जगत में धनपति है जिसका यह संपूर्ण संसार है। वह नित्य प्रति सबको अपने भंडार से दान देता है, परंतु उसका कोष कभी नहीं घटता। चींटी से लेकर हाथी तक इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, वह सबको दिन रात भोजन बांटता रहता है। उसकी दृष्टि सबके ऊपर समान रूप से रहती है। वह कोई मित्र हो या शत्रु, सबका ध्यान रखता है। वह किसी पक्षी या पतंगे को भी नहीं भूलता। संसार में जितने भी प्रकट और अप्रकट प्राणधारी हैं, वह सबका ध्यान रखता है। 1. कवि नूर मोहम्मद इंद्रावती पृष्ठ 1। 2. वही पृष्ठ 2। 3. उस्मान चित्रावली पृष्ठ 115। हमारे लिए न जाने कितने निस्वार्थ कर्म करता है। उसने अनेक प्रकार पृष्ठ संख्या 199 के भोग तथा भोजन उत्पन्न किए हैं, जिन्हें वह सदैव दूसरों को ही खिलाता है, स्वयं कभी नहीं खाता। उसके पास जो कुछ खाने पीने की सामग्री है, उसी से सबको भोजन और जीवन प्राप्त होता है। सब उसी की आशा के आश्रित हैं। वह स्वयं कामना विहीन है और उसे किसी का आश्रय उपेक्षित नहीं है। उस दानी के दोनों हाथों में ऐसा प्रभाव है कि युगों से अपने कोष से दान देते रहने पर भी उसके कोष में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। इस संसार में उसके अतिरिक्त जो कोई भी किसी को कुछ देता है, वह सब उसी का दिया हुआ है। धनपति उह जेहिक संसारु, सबै देई निति घट न भंडारु, जावत जगत हस्ती और चाटा, सब कह भृगुति राति दिन बाँटा, ताकर दीठ जो सब उपराही, मित्र शत्रु कोई बिसरै नाही, पंखी पतंग न बिसरै कोई, परगट गुपुत जहाँ लगी होई, भोग भृगुति बहु भांति उपाई, सबै खवाई आप नहीं खाई, ताकर उह जो खाना पियाना, सब कह देई भुगति और जियाना, सबै आस हर ताकर आसा, वह न काहू के आस निराशा, जुग जुग देत घटा नहीं, उभय हाथ असकीन, और जो दीन जगत मह, सो सब ताकर दीन। 1. कवि जायसी ने मंडप गमन खंड में भी सगुण भक्तों के ढंग पर भगवान का वर्णन किया है। सगुणवादियों में नारायण की मान्यता है। उसको भक्त वत्सल और परम कृपालु बताया गया है। यही भावना मंदिरों और मूर्तियों के रूप में फलित दिखाई पड़ती है। नमो नमो नारायण देवा, कामे जोग करो तोरी सेवा, तू दयाल सबके उपराही, सेवा केरी आस तो ही नाही। दो, अब हम सूफी कवियों द्वारा परम तत्व के निर्गुण रूप को पुष्ट करने वाले कतिपय उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं। एक, जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 2-3। दो, जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 71। सुल्तान अबू सईद अबुल खैर इस संबंध में अपने भाव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। एदर अयानहा ओ निहानहा हमा हेच, पिंदार यकीनहा ओ गुमानहा हमा हेच, अज जाते तू मुतलकन निशान तवा दाद, काजा की तुई बबद निशानहा हम हेच। एक, हे ईश्वर, तेरे सम्मुख परोक्ष एवं प्रत्यक्ष दोनों प्रकार की वस्तुएं तुच्छ हैं, समस्त विश्वास एवं विचार तुच्छ हैं और ये तुझ तक नहीं पहुंच सकते। तेरी सत्ता के चिन्ह नहीं ढूंढे जा सकते, क्योंकि जहां पर तेरी जात है वहां सब चिन्ह तुच्छ हैं। तथा आ वक्त की ई नजुम ओ अफलाक नबूद, वहीं आबो हवा ओ आतिशो खाक नबूद, असरारे यगानगी सबक भी गुफ्तम, बई कालिबो ई नवा ओ इद्राक नबूद। दो, अर्थात प्रभु कहता है कि जिस समय ये सितारे और आकाश न थे, ये सत्व रज और तम गुण त्रय न थे, और ये पानी हवा आग और धरती तत्व न थे, देह ध्वनि और बुद्धि न थी, मैं अपनी अद्वितीयता एवं निर्गुणता का पाठ रट रहा था। कैबाशत की लिवासे हस्ती शुदाशक, ताबा गश्ता जमाले वजाए मुतलक, दिल दर सत्वाते नूरे ओ मुस्तहलक, जादर गलबाते शौके ओ मुस्तगरक। तीन, एक, रुबाइयाते अबू सईद अबुल खैर लाहौर शेख जान मोहम्मद अल्लाह बख्श रुबाई 116 पृष्ठ 50। दो, रुबाई 198 पृष्ठ 70। तीन, रुबाइयाते अबू सईद अबुल खैर लाहौर शेख जान मोहम्मद अल्लाह बख्श रुबाई 240 पृष्ठ 79। अर्थात कब वह समय आएगा जब मेरे जीवन का वस्त्र तार तार हो जाएगा पृष्ठ संख्या 201, और प्रभु के श्री मुख का दर्शन कर पाऊंगा जो गोश्त पोस्त समय और स्थान के बंधन से मुक्त है। दिल उसके नूर के जलाल में फना होगा और आत्मा उसके प्रेम के आधिपत्य में तल्लीन होगी। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार भगवान के निर्गुण रूप का चित्रण इस प्रकार करते हैं। जऊ निशा जुजबे निशानी कस नयाफ्त। एक, अर्थात उसके निशान में सिवाय बेनिशानी के किसी को कुछ नहीं मिला। तात्पर्य यह कि भगवान निराकार है, उसका कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, वह परम तत्व गुप्त है। ए जहाने हल्क हेरो मादाई, तू बजरे पर्दा पिन्हा मादाई। दो, अर्थात हे ईश्वर, समस्त संसार चकित है और तू पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। तथा हर कसे अस्तु निशाने दादबाज, खुद निशानत नीचते दानाए राज, गर्चे संधि चश्मे गर्दू बाज गर्द, हम न दीद अज राहे तू यक जर्रा गर्द, न जमी हम दीद हरगिज गर्दे तू, गर्चे बर सारे खाक कर्द अस दर्दे तू। तीन, एक, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार मंती कुत्तैर लाहौर शेख मुबारक अली पृष्ठ 67। दो, वही पृष्ठ 10। तीन, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार मंती कुत्तैर लाहौर शेख मुबारक अली पृष्ठ 6। पृष्ठ संख्या 202, अर्थात समस्त रहस्यों को जानने वाले हे ईश्वर, हर प्राणी ने तेरी पहचान बताई, परंतु तेरा कोई निशान ही नहीं है। यद्यपि आकाश ने अपनी बहुत सी आँखें खोली, सितारे आकाश की आँखें हैं, तथापि तेरे मार्ग की धूल का एक कण तक नहीं पाया, और न भूमि ही ने तेरे रास्ते की गर्द तक पाई। निस्संदेह उसने तेरे लिए अपने सिर पर बहुत सी खाक उड़ाई, अर्थात खाक छानी। इस भाव से संबद्ध फारसी सूफी कवियों के अगणित उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ख्वाजा हाफिज लिखते हैं, परी न हुफ्ता रुख देव दर करिश्मा ओ नाज, बसोख्त अक्ल जे हैरत की ईंचे बुल अज़्विस्त। एक, परी ने अपना रुख छिपाया हुआ है और देव छल छंद एवं हाव भाव में व्यस्त है, बुद्धि चकित है कि यह क्या अद्भुत बात है। यहाँ परी परमात्मा का और देव लोभ का प्रतीक है। भाव यह है कि क्योंकि परमात्मा अव्यक्त है, निराकार है, अतएव लोभ का इस संसार में साम्राज्य है। बुद्धि चकित है कि परमात्मा अदृश्य क्यों है, वह साकार क्यों नहीं है। अतः भगवान अद्वितीय है, निर्गुण निराकार अलक्ष्य अरूप और अवर्ण है, वह अनादि अनंत और अजन्मा है। अमीर खुसरो का निम्न शेर इस संबंध में बहुत प्रसिद्ध है। निस्त खुदाए बजुज आ बेनियाज, कुस्त खुदावंद खुदावंद साज। अर्थात उस अद्वितीय निरपेक्ष सत्ता के अतिरिक्त और कोई नहीं, ऐसा और कौन सृष्टा है जिसने भगवान को जन्म दिया हो। भाव यह कि भगवान एक है, उसके समान दूसरा नहीं है। उसने संपूर्ण सृष्टि को जन्म दिया है, परंतु आप अजन्मा है। एक, दीवाने हाफिज, लाहौर, काशीराम प्रेस, पृष्ठ 86। दो, अमीर खुसरो मतलाउ उल अनवार, लखनऊ, पृष्ठ 4। इसी प्रकार हिंदी सूफी कवियों ने निर्गुण रूप को अपनाते हुए पृष्ठ संख्या 203 उपर्युक्त भावों को अभिव्यक्त किया है। वह सृष्टिकर्ता इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, उसका कोई रूप और वर्ण नहीं। इस विश्व में जो कुछ भी है वह सब उसी की रचना है। जहाँ तक किसी वस्तु का भी अस्तित्व है, उसका आदि कारण वही है और वह स्वयं किसी का पैदा किया हुआ नहीं है। वह भूतकाल में भी विद्यमान था, अब भी विद्यमान है, और भविष्य में जब कोई नहीं रहेगा तब केवल वही रहेगा। उसने जैसा चाहा वैसा किया, और जैसा वह करना चाहता है वैसा ही करता है। अतः वह निर्गुण ब्रह्म उसमें अद्वितीय, अलक्ष्य, अरूप, अवर्ण, अनादि, अनंत, अगम्य, अगोचर एवं अंतर्यामी है। जैसी कहते हैं अलख अरूप अबरन सो करता। एक, तथा वह सब कीन जहाँ लगी कोई, वह नहीं कीन काहु कर होई। हुत पहले अरु अब है सोई, पुनि सो रह नहीं कोई। जो चाहा सो कीन सी, करे जो चाहे कीन, बर्जन हार न कोई, सब चाह जीव दीन। दो, तथा है नहीं कोई ताकर रूपा, ना ओही सन कोई आही अनूपा। तीन, और रूप रेख बिन निर्मल नाऊ। चार, परम तत्व एक है, उसके समान अन्य कोई नहीं। वह संपूर्ण विश्व का सृष्टा है, परंतु स्वयं अजन्मा है। उसने भांति भांति के रूपों का सृजन किया है, परंतु स्वयं अरूप है। आप गुप्त है, परंतु प्रकट गुप्त सभी बातों को जानता है। अतः वह एक परम तत्व सर्वज्ञ है, असम है। आप अनादि और अनंत है। एक, जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 3। दो, जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 3। तीन, वही पृष्ठ 3। चार, वही पृष्ठ 3। सूफियों द्वारा प्रतिपादित इसी रूप की विवेचना करते हुए नूर मोहम्मद लिखते हैं पृष्ठ संख्या 204, अहई अकेले सो सृजन हारा, जानत परगट गुप्त हमारा। एक, कीन गगन रवि शशि मही मेरा, को नाही जोरी तेही केरा। दो, उस्मान ने भी लिखा है कि वह भगवान सृष्टि का कर्ता होता हुआ भी अजन्मा है। उसने अनेक रूपों और रेखाओं का निर्माण किया है, परंतु आप अरूप और अवर्ण है। सो कर्ता जही काहु न कीन। तीन, तथा कीन है सी रूप बरन जह ताई, आपु अवरण अरूप गुसाई। चार, इसी प्रकार फारसी और हिंदी सूफी कवियों ने परम तत्व के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का चित्रण किया है। अब हम कतिपय ऐसे स्थलों का उल्लेख करते हैं जहां एक साथ सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की चर्चा की गई है। सुल्तान अबू सईद अबुल खैर कहते हैं कि वह गुप्त भी है और प्रकट भी। हस्ती की अया नीस्त दवद दर्शाने, दर्शाने दिगर जलवा कुनद हर आने। पांच, अर्थात वह गुप्त परम सत्ता जो प्रकट नहीं है, किसी न किसी रूप में चक्कर खा रही है। वह प्रतिपल नित्य नई तड़क भड़क और ठाट बाट के साथ जलवा दिखाई रही है। इसी भाव को सरमत ने इस प्रकार प्रकट किया है, मशहूर शुदी बदिल रुबाई हमाजा, बेमिसल शुदी दर आशनाई हमाजा। एक, नूर मोहम्मद इंद्रावती पृष्ठ 1। दो, वही पृष्ठ 1। तीन, उस्मान चित्रावली पृष्ठ 2। चार, वही पृष्ठ 1। पाँच, रुबाइयाते अबू सईद अबुल खैर लाहौर, शेख जान मोहम्मद अल्लाह बख्श, रुबाई 427 पृष्ठ 124। पृष्ठ संख्या 205, मन आशिके ही तौरे तवाम में बीनम, खुदरा न नुमाई ओ नुमाई हमाजा। एक, अर्थात हे परम सुंदर प्रियतम, तेरी सुंदरता एवं मनोहरता सर्वत्र प्रसिद्ध है। तेरी प्रेम प्रीति की प्रतिष्ठा सर्वत्र अद्वितीय है। मैं तेरे रूप का अनन्य भक्त एवं प्रेमी हूँ। तू गुप्त होते हुए भी सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने भी दोनों रूपों का वर्णन इस प्रकार किया है, एजे पैदाई ए खुद बस नापदीत, जुमला ए आलम तू वो कस नापदीत। दो, अर्थात वह परम सत्ता जो अपनी विद्यमानता की दृष्टि के अदृश्य है, समस्त विश्व में तो वर्तमान है, फिर भी गुप्त है, तथा ए दरुणे जाबरुणे जातुई हर्चे गोयम आनई ओ आतुई। तीन, हे ईश्वर, तू आत्मा के भीतर भी है और बाहर भी, जो कुछ मैं कह रहा हूँ तू वह भी है और नहीं भी है, और गर्चे दर्जा गंजे पिन्हा हम तुई आकाश आशकारा बर्तनोजा हम तुई। चार, अर्थात हे ईश्वर, यद्यपि आत्मा के भीतर अंतर्निहित तू एक निधि है, तथापि तू आत्मा एवं शरीर पर प्रकट भी है। एक, रुबाइयाते सरमत दिल्ली शाहजहानी प्रेस रुबाई 6 पृष्ठ 18। दो, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार मंती कुत्तैर लाहौर शेख मुबारक अली पृष्ठ 6। तीन, वही पृष्ठ 6। चार, वही पृष्ठ 6 पृष्ठ संख्या 206। ख्वाजा हाफिज ने भी दोनों रूपों का वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि प्रभु अदृष्ट होते हुए भी प्रत्येक घट में निवास करता है। ए गायब अज नजर की शुदी हम नशीने दिल मे गोय मत दुआ ओ सना मे फरस्त मत। एक, अर्थात हे अदृष्ट ईश्वर, जब से तू मेरे दिल का निवासी हुआ है मैं प्रतिपल तेरी प्रार्थना एवं वंदना करता हूँ। कवि उर्फी ने भी कहा है, निशाने जा हमी जूता निशा अजबे निशायाबी मकाने दिल तलब कुंता मका दरला मका बीनी। दो, अर्थात तू अपनी आत्मा को पहचान ले ताकि अलक्ष्य प्रभु को पा सके। तू अपने हृदय को स्वच्छ एवं निर्मल बना ताकि तू उस प्रभु के दर्शन कर सके जो किसी एक विशेष स्थान में नहीं रहता। हिंदी के सूफी कवियों ने भी अल्लाह के सगुण और निर्गुण रूपों की एक साथ चर्चा की है। जैसी लिखते हैं कि वह जीव रहित होते हुए भी जीवित है, हाथ न होते हुए भी सब कुछ करता है, बिना वाणी के भी सब कुछ बोलता है, शरीर रहित होते हुए भी प्रत्येक स्थान में भ्रमण करता है, बिना कानों ही के सब कुछ सुन लेता है, हृदय न होते हुए भी वह सब कुछ विचार लेता है, बिना नेत्रों के भी सब कुछ देख लेता है, उसके रहने का कोई मुख्य स्थान नहीं किंतु साथ ही कोई ऐसा स्थान भी नहीं जहाँ वह विद्यमान न हो, वह निराकार और निर्विकार है, वह विश्व भर में इस प्रकार व्याप्त है कि न तो वह उससे इतना मिला हुआ ही है कि उसका अस्तित्व भी विश्व में विलीन हो जाए, और न वह विश्व से नितांत पृथक ही है। जीव नाही पै जिए गुसाई कर नाही पै करे सवाई जीभ नाही पै सब किछु बोला तन नाही सब ठाहर डोला श्रवण नाही पै सब किछु सुना हिया नाही पै सब किछु गुना नयन नाही पै सब किछु देखा कौन भांति अस जाई बिसेखा। एक, दीवाने हाफिज लाहौर काशीराम प्रेस पृष्ठ 68। दो, उर्फी कसायदे उर्फी लखनऊ पृष्ठ 77 पृष्ठ संख्या 207। है ना ही कोई ताकर रूपा न ओहिसन कोई आ ही अनूपा न ओहि ठाउ न ओहि बिन ठाउ रूप रेख बिनु निर्मल नाउ। एक, वह परम तत्व निर्गुण होते हुए भी दयालु दाता तथा गुणों का आगार है, तू दयालु गुण निर्गुण दाता। दो, वह सर्वव्यापी प्रकट भी है और गुप्त भी प्रगट गुप्त सु सर्वव्यापी। तीन, मंझन का निर्गुण निराकार भगवान भी प्रकट एवं गुप्त रूपों में सर्वव्यापी है, गुप्त रूप प्रगट सब ठाई निर्गुण एकाकार गोसाई। चार, उस्मान ने लिखा है कि वह अद्वितीय विधाता प्रकट एवं गुप्त दोनों रूपों में वर्तमान है, प्रगट गुप्त विधाता सोई दूसर और जगत नहीं कोई। पाँच, नूर मोहम्मद ने भी कहा है कि यद्यपि उसका कोई स्थान नहीं है तथापि न कोई स्थान उससे रिक्त है, ना ओहि ठाउ ना ओहि बिन ठाउ। छे, कासिम शाह भी लिखते हैं, ए ए अलख जो अहे अकेला परघट गुफ्त सभी रंग खेला। सात, एक, जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 3। दो, वही पृष्ठ 71। तीन, वही पृष्ठ 3। चार, मंझन कृत मधुमालती वाराणसी 1957 पृष्ठ 1। पाँच, उस्मान चित्रावली पृष्ठ 2। छः, नूर मोहम्मद इंद्रावती पृष्ठ 1। सात, कासिम शाह हंस जवाहिर पृष्ठ 3। वह सबके भीतर भी है और बाहर भी, पृष्ठ संख्या 208। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सूफियों के परम तत्व के गुणों में रहस्यात्मक वैविध्य है। सूफी सगुणवादियों के समान न तो उसको अवतार मानते हैं और न उसके रूप की चर्चा करते हैं, अतः इन्हें मूर्ति पूजक तथा अवतारवादी सगुण भक्तों के साथ नहीं रखा जा सकता। निर्गुणवादियों के साथ उनका साम्य अधिक स्पष्ट है।